आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले ऑडियो में घोड़ावन पक्षी के बारे में काफी कुछ जान लिया था और काफी कुछ बातें भी की थी उनसे। इस ऑडियो में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे, तो आप सब जल्दी से अपने किताब के पेज नंबर 63 पर आ जाएं। यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य दिया गया है। अभ्यास कार्य में सबसे पहला कार्य है शब्दार्थ, जो कि हम इसमें देखते हैं कि कुछ शब्द हैं जो कि हमारे लिए नए हैं, उनका अर्थ हम समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला शब्द है सर्वहारी। सर्व मतलब सारे, हारी मतलब आहार। तो सर्वहारी सभी प्रकार का आहार करने वाला, शाकाहारी व मांसाहारी, सारे ही प्रकार का भोजन करने वाला, फिर वो शाकाहारी हो या मांसाहारी। तिलहन, तेल युक्त फसल। तिलहन मतलब होता है ऐसे फसल जिनसे तेल निकाला जाता है। अगला शब्द है दलहन, दालों की फसल। जितनी भी दालों की फसल होती है उनको दलहन कहते हैं। फिर अगला शब्द है लुप्त। लुप्त मतलब होता है गायब या समाप्त होना। फिर अगला शब्द है प्रजाति। प्रजाति मतलब नस्ल। अगला शब्द है कागार। कागार मतलब किनारा, तट, अंत। पानी के नदी के किनारे को हम कागार कहते हैं, तट कहते हैं, या जहां पानी का अंत होता है उस चीज को हम तट या अंत कहते हैं, कागार कहते हैं। इसके बाद आपके दिए हैं उच्चारण के लिए शब्द, जिसमें पहला शब्द है मिट्ठू। म में छोटे ई की मात्रा, ट में हलंत और ठ में बड़ी ऊ की मात्रा, मिट्ठू। दूसरा शब्द है महाराष्ट्र। म ह में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा, आधा स, ट में नीचे र की मात्रा, त्र की मात्रा, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश। अ में आ की मात्रा, आधा न, ध, ध में आधे र की मात्रा, प्र, द, द में ए की मात्रा, श। आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आपके भारत का दो राज्य है। फिर अगला शब्द है सर्वहारी। स व में आ की मात्रा, उसके ऊपर आधे र की मात्रा, ह, ह में आ की मात्रा, र में बड़ी ई की मात्रा, सर्वहारी। अगला है आश्चर्य। अ में आ की मात्रा, आधा श, सलजम वाला आधा श, ये र नहीं है, श है लेकिन आधा। आधे श के बाद आता है च, य, य के ऊपर आधे र की मात्रा, आश्चर्य। फिर है टिड्डी। ट में छोटे ई की मात्रा, ड, ड से डमरू वाला ड, ड के नीचे हलंत, फिर से ड और उसमें बड़ी ई की मात्रा, टिड्डी। ये थे हमारे उच्चारण के लिए कुछ शब्द। क्या थे वो? मिट्ठू, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सर्वहारी, आश्चर्य, टिड्डी। अब आ जाते हैं हम सोचें और बताएं कार्य पे, जिसमें पहला प्रश्न है, गोडावन की ऊंचाई कितनी है? तो हमने पाठ में पढ़ा था, जिसमें गोडावन ने बताया था कि उसकी ऊंचाई 1 मीटर तक की है। दूसरा प्रश्न है, सर्वहारी प्राणी कौन सा है? हमने इस पाठ में एक ही प्राणी के बारे में पढ़ा है, वो है गोडावन। तो सर्वहारी प्राणी कौन हुआ? गोडावन। तीसरा प्रश्न है, गोडावन स्वभाव से कैसा पक्षी है? गोडावन स्वभाव से शर्मीला पक्षी है, लेकिन वो बिल्कुल आलसी नहीं है। चौथा प्रश्न आता है, मादा गोडावन एक बार में कितने अंडे देती है? मादा गोडावन एक बार में एक ही अंडा देती है। फिर आता है लिखें, जिसमें पहला प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमांक कोष्टक में लिखें। आपके कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके 4 उत्तर हैं। उन 4 उत्तर में से जो सही उत्तर है उसका क्रमांक आपको इस कोष्टक में लिखना है, इस ब्रैकेट में लिखना है। जैसे कि पहला है, गोडावन का शरीर होता है अ काला, ब भूरा, स हरा या द नीला। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि गोडावन का शरीर ब भूरा होता है, तो इसमें सही उत्तर ब है, तो आप ब्रैकेट में ब लिख लेंगे। फिर अगला वाक्य है, गोडावन किस ऋतु में के आगमन पर फूला नहीं समाता? फूला नहीं समाना मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। तो वो कौन सी ऋतु है, कौन सा मौसम है जिसमें गोडावन पक्षी बहुत ही खुश रहता है? अ शीत, ब ग्रीष्म, स वर्षा या द तीनों में। शीत ठंडे का मौसम, ब ग्रीष्म गर्मी का मौसम, स वर्षा बारिश का मौसम या द तीनों ही मौसम में वो खुश रहता है। तो हमने पढ़ा था वर्षा ऋतु में, तो इसका सही उत्तर है स वर्षा, ब्रैकेट में आप स लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, गोडावन को राजस्थान में किसका दर्जा प्राप्त है? राजस्थान की सरकार ने गोडावन पक्षी को राज्य पक्षी का दर्जा दिया है। फिर तीसरा प्रश्न आता है, गोडावन संरक्षण के लिए कौन सा पार्क बनाया गया है? संरक्षण मतलब उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए कौन सा पार्क है जो बनाया गया है? तो हमने पाठ में पढ़ा था, जैसलमेर में जहां सावन के घास मिलते हैं, सावन के घासों में गोडावन पक्षी रहते हैं, वहां के क्षेत्र को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है। ठीक है, कौन सा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल डेजर्ट पार्क। तो गोडावन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान पार्क बनाया गया है। चौथा प्रश्न है, गोडावन भयभीत क्यों है? गोडावन डरा हुआ क्यों है? वो इसलिए डरा है क्योंकि उसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, कम होते जा रही है। कई लोग उसकी सुरक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, सरकार ने भी बहुत सारे नियम कानून उसकी सुरक्षा के लिए बनाए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिसके कारण उनका विनाश हो रहा है, उनके संख्या कम होते जा रही है। इस कारण गोडावन पक्षी अभी भी भयभीत हैं। तो यहाँ पे आपके सारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अब हम व्याकरण की ओर बढ़ते हैं, भाषा की बात। जिसमें पहला प्रश्न दिया है, इस पाठ में सुंदर, गर्दन, पंद्रह, महाराष्ट्र शब्द आए हैं। इनमें र को अलग अलग तरह से लिखा गया है। उपर्युक्त शब्दों में र के प्रकार, जैसे कि ये इस प्रश्न में आपको बता रहे हैं कि हमारे पाठ में कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि सुंदर, गर्दन, पंद्रह, महाराष्ट्र। इन सारे शब्दों में र के रूप आए हैं, वो भी अलग अलग तरह से। तो ये सारे शब्दों में अगर हम र को निकालें तो वो कैसे दिखेंगे, मतलब कि र के कौन कौन से प्रकार हैं, वो आपके इस डब्बे में दिए हैं। जैसे कि पहला शब्द है सुंदर, सुंदर में जो र है पूरा र वो लिखा है। फिर दूसरा शब्द है गर्दन, गर्दन में द के ऊपर आधा र लगा है जो कि ऐसा दिखता है। फिर है पंद्रह, पंद्रह में द में नीचे से आधे र लगा है, उसे भी हम र पढ़ते हैं। फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ट में जो आधे र की मात्रा है वो कुछ इस तरह से है, इसे भी हम र या र के प्रकार पढ़ते हैं। पाठ में इस प्रकार के और भी शब्द आए हैं। ऐसे र के विभिन्न रूप वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे आपको चार शब्द दिए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के र आए हैं, ऐसे ही शब्द आपके पाठ में भी अलग अलग रूप में लिखे गए हैं जिसमें र का अलग अलग रूप में प्रयोग किया गया है। उन सारे शब्दों को आपको ढूंढ कर लिखना है। बहुत ही आसान सा काम है। आप पाठ को दोबारा पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ आपके पाठ दोबारा भी पढ़ लेंगे और साथ ही साथ आपका र के प्रकार वाले शब्द भी निकल जाएंगे। फिर लिखा है मेरा संकलन। गोडावण पर केंद्र सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है। विभिन्न पशु पक्षी पर जारी डाक टिकट का संकलन कर उत्तर पुस्तिका में चिपकाएं। संकलन मतलब होता है संग्रह, इकट्ठा करना। अब जो केंद्र सरकार है उन्होंने गोडावण पक्षी का चित्र है वो डाक टिकट पर छपवाया है। ऐसे ही पशु पक्षी हैं जिनका चित्र डाक टिकट पर छपवाया है, जो कि या तो लुप्त हो रहे हैं या तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी हैं। उन सारे ऐसे पशु पक्षी के जारी डाक टिकट का संकलन करना है आपको, इकट्ठा करना है और उनको इकट्ठा करके अपने उत्तर पुस्तिका में चिपकाने हैं। फिर है बहुभाषिकता के शब्द। अब बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है बहुभाषिकता, बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। ठीक है, ऐसे लोग जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे इस पाठ में भी ऐसे कुछ शब्द दिए थे जो कि अंग्रेजी के थे, जैसे कि ब्लास्ट, मीटर, डेजर्ट, नेशनल पार्क। तो ये सब क्या है? अंग्रेजी के शब्द हैं। आप सबको भी बहुभाषिकता होना चाहिए। आपको सिर्फ एक भाषा का ज्ञान नहीं बल्कि एक से ज्यादा भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे आपका अभ्यास कार्य पूरा होता है। लेकिन हम हमेशा की तरह इस पाठ को भी एक सुविचार के साथ अंत करेंगे। यहाँ जो सुविचार दिया है उसमें लिखा है, प्रकृति, समय और धैर्य की ये तीनों हर दर्द की दवा है। प्रकृति, समय और धैर्य। प्रकृति मतलब हमारी नेचर, हमारा कुदरत, हमारी जो धरती की सौंदर्य है, पेड़ पौधे पक्षी जानवर, प्रकृति जो नेचर है, समय और धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस, हम में धीरज कितनी है, ये सारी, ये तीनों चीजें हर दर्द की दवा है। ठीक है, अगर आप उदास हैं तो आप प्रकृति से जाकर मिले, टहलने निकल जाएं, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। कुछ चीज बिगड़ गया है, उस चीज को सुधरने के लिए समय दे, वो चीज सुधर जाएगा। और मान लीजिए आपको चोट लग गई, तो उस चोट को धैर्य से समय देकर रखेंगे तो वो चोट भी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो प्रकृति, धैर्य और समय, ये तीनों हर दर्द की दवा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे अगले पेज पे, पेज नंबर 65 पे एक कविता दी है जो कि केवल पढ़ने के लिए है। देश हमारा, इस कविता का शीर्षक है देश हमारा। देश हमारा शीर्षक से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे देश भारत के बारे में ये कविता लिखी गई है। हमारे देश भारत के पर आधारित है ये कविता। आप जैसे कि पिक्चर में भी, इस फोटो में भी देख सकते हैं कि हमारे भारत देश का नक्शा बना है और यहाँ पे जल और पहाड़ और हमारे देश का तिरंगा ये भी बना है। तो ये कविता क्या कह रही है, ये कविता के अंदर हमारे देश की सुंदरता कैसे लिखी है, आइए पढ़ते हैं साथ में। सुखद मनोहर सबका प्यारा, हरा भरा ये देश हमारा। नई सुबह ले सूरज आता, धरती पर सोना बरसाता। खग कुल गीत सुखी के गाता, बहती सुख की अविरल धारा। हरा भरा ये देश हमारा, बहती है पुरवाई प्यारी, खिल जाती फूलों की क्यारी। तितली बनती राज दुलारी, भ्रमर सिखाते भाई चारा। हरा भरा ये देश हमारा, हिम के शिखर चमकते रहते, नदियां बहती झरने बहते। चलते रहो सभी से कहते, सभी ही आंखों का तारा। हरा भरा ये देश हमारा, इसकी प्यारी छटा अपरिमित, नए नए सपने सजते नित। सब मिलकर चाहे सबका हित, यह खुशियों का आंगन सारा। हरा भरा ये देश हमारा। तो बहुत ही सुंदर, प्यारी, मनमोहक कविता है जो कि हमारे भारत देश के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन करती है। हमारा देश, ये कहती है हमारा देश है हरा भरा। और इस कविता में देश की और सुंदरता कैसे दर्शाई है, कविता कहती है कि सुखद मनोहर सबका प्यारा है हमारा देश, सुखी से भरा है, मन को मोह लेता है और सबका प्यारा है ये देश। नई सुबह ले सूरज आता, धरती पर सोना बरसाता। हर सुबह सूरज नई सुबह लेके आता है और सूरज की रोशनी जब भारत देश पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि धरती पर सोना बरस रहा हो। सूरज की किरणें, सूरज की चमक इस प्रकार होती है कि लगता है सोना पूरे धरती पर छा गया है। खगकुल गीत सुखी के गाता, बहती सुख की अविरल धारा। खगकुल मतलब, खग मतलब होता है आकाश में उड़ने वाले पक्षी। जो भी पक्षी हैं जो भारत में मिलते हैं वो खुशी के गीत गाते हैं। ऐसा लगता है कि खुशी की, सुख की बहुत ही अच्छी धारा बह रही है। अविरल मतलब घनी, जो बहुत सी पास पास और घनी धारा है, खुशी की वैसी धारा बह रही है। खिल जाती फूलों की क्यारी, तितली बनती राज दुलारी। भ्रमर सिखाते भाई चारा, हरा भरा ये देश हमारा। जो यहाँ की तितलियां हैं वो राज दुलारी बन जाती हैं। जो फूल की क्यारियां हैं वो खिल जाती हैं। कैसे खिलती हैं,
यहाँ जो पुरवाई बहती है पुरवाई प्यारी, खिल जाती फूलों की क्यारी। पुरवाई मतलब कि वो हवा जो पूर्व दिशा से आती है, वो हवा जो फूलों की कलियाँ हैं उनको खिला देती हैं। फिर जो तितलियाँ हैं वो राज दुलारी बन जाती हैं, और जो भंवरे हैं वो भाईचारे सिखाते हैं, क्योंकि भंवरे साथ मिलकर अपना घर बनाते हैं तो वो भाईचारे सिखाते हैं। इसी कारण हमारा देश हरा भरा है, मतलब खुशहाल है। हिम के शिखर चमकते रहते, नदियाँ बहती झरने बहते। हिम के जो शिखर हैं, फोटो में भी देखो जो ऊपर पहाड़ के इलाके जो है, ये हिम के शिखर है। हिम मतलब बर्फ, शिखर मतलब ऊंचे पहाड़। जो हिमालय के शिखर हैं, हिम शिखर उन्हें कहते हैं, वो हमेशा चमकते रहते हैं। नदियां हैं वो झरने बनकर बहती रहती हैं। चलते रहो सभी को कहते, और वो क्या कहती हैं कि हमेशा चलते रहो, कभी मत रुको। जैसे नदियां हमेशा बहते रहती हैं, वो कभी अपना काम करना नहीं छोड़ती, वो कभी बहना बंद नहीं करती, वैसे ही वो हम सबको कहती कि हमेशा चलते रहो। सबकी ही आंखों का तारा हरा भरा ये देश हमारा। सबकी आंखों का तारा है भारत, सबको बहुत प्यारा है भारत। इसकी प्यारी छटा अपरिमित, नए नए सपने सजते नित। अपरिमित मतलब होता है अगणित, बेहिसाब, जिसकी गिनती ना की जा सकी। तो यहाँ की जो प्यारी छटा है, छटा मतलब सुंदरता, वो बहुत ही बेहिसाब है, मतलब जिसकी गणना या जिसकी गणित हम कर ही नहीं सकते। नए नए सपने सजते नित, नित मतलब रोज, नए नए सपने हमेशा सजते हैं, मतलब कि इस भारत में जितने भी भारतवासी हैं, देशवासी हैं, वो उन सब के मन में एक नई नई उमंग, नए सपने सजते हैं। सब मिलकर चाहे सबका हित, सब खुशियों का आंगन सारा, हरा भरा ये देश हमारा। सब मिलकर चाहते हैं सबका हित, हित मतलब भलाई, सब चाहते हैं कि सबकी भलाई हो, हमारे देश में जितने भी हमारे भाई बंधु हों सबकी भलाई हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो या किसी भी राज्य का हो, उन सब का हित, उन सब की भलाई सब चाहते हैं। मानवता, मनुष्यता हमारे भारत में बसी है, हमारे भारत के लोगों में बसी है। ये खुशियों का आंगन सारा, जो भारत है उसका आंगन खुशियों से भरा है। हरा भरा ये देश हमारा, और देश हमारा कैसा है, हरा भरा। लेकिन बच्चों, ये जो कविता है ये हमारे देश भारत की बहुत ही सुंदर कविता है, लेकिन आज के समय में भारत देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे भारत देश को की सुंदरता पर दाग लगा देती हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो पशु पक्षियों को मारते हैं अपने फायदे के लिए, उनके उनके वंशज को, उनके कुल को उनका नाश करते हैं अपने फायदे के लिए। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो चोरी और गलत कार्य में भी फंसे हैं। यहाँ इस भारत में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। हमें अपने देश के बारे में अच्छा और बुरा दोनों पता होना चाहिए। यहाँ के बदलते समय में, क्योंकि औद्योगिकरण, शहरीकरण हो रहा है, हर गांव शहर बनना चाहता है, उसके कारण यहाँ का जो कुदरत है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो प्रकृति है, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। क्योंकि बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत लोग पेड़ काट रहे हैं, लेकिन उसके जगह पेड़ उगाना या दोबारा पेड़ लगाना भूल जा रहे हैं, जिससे हमारा भारत एक खतरे की दिशा में जा रहा है। कुछ लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, एक दूसरे के हित में काम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी सही नहीं है। हम अपने फायदे के लिए बेजुबान मासूम जानवरों की हत्या करते हैं वो भी सही नहीं है। यहाँ पर कभी कभी मनुष्य में ही भेदभाव होता है, जाति के धर्म पर, धर्म के धर्म के आधार पर। कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन होती हैं, तो आपको वो उन सारी चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि आप आने वाले समय में अपने भारत में जो कमियां हैं, जो अच्छी चीजें नहीं हैं, उन सब को सुधार सको। अगर हर चीज में अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी तो हम सुधारेंगे कैसे? जैसे हमने थर्ड क्लास में एक कहानी पढ़ी थी, कलाकार का असंतोष। उसमें उसके पिता हमेशा उसकी कलाकारी में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते थे। क्यों? ताकि उसमें हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा, प्रगति की इच्छा बनी रहे और वो नया नया चीज, जो भी कमी है उसका सुधार करते रहे। अगर उस कलाकार को ऐसा लगेगा कि उसने सारी कमियां पूरी कर ली तो फिर उसकी प्रगति बंद हो जाएगी, है ना? वैसे ही हमारे भी देश में अगर सब चीज अच्छा ही है तो हम बुरे की तरफ देखेंगे ही नहीं और उसको कभी ठीक करने की कोशिश करेंगे ही नहीं। तो हमें हमारा भारत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अनोखा है। ऐसा राष्ट्र आपको पूरे विश्व में कहीं देखने में नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जिन्हें सुधारने हैं, जो कि हमारे भारत में गलत हो रहे हैं। गरीबों को मदद करनी है, मानवता मनुष्यता ये दिखानी है, जानवरों को भी प्यार देना है, खाना देना है, उनकी भूख प्यास उनकी सुरक्षा करनी है। आप उनका ख्याल रखोगे, वो आपका ख्याल रखेंगे, तभी तो भारत एक सुंदर और अच्छा देश बनेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और इसकी सुरक्षा और इसकी सौंदर्य खत्म ना हो उसके लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर करेंगे। इसी के साथ हम इस ऑडियो का यहीं अंत करते हैं, हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।